ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போலியே சச்சிதானந்த பகவான் கி, ஆனந்த கந்த பகவான் கி அசீம் ஏது கி கிருபா கே சாத் ईशावास्य उपनिषद के द्वारा हम अपने स्वस्वरूप पर विचार कर रहे थे. ईशावास्य उपनिषद का नौवां मंत्र, अंधतम प्रवशन्ति ये अविद्या उपासते, जो अविद्या रूपी कर्म की उपासना करते हैं वह अंधकार में प्रवेश करते हैं. ततो भूय इवते ततो य उ विद्याया गुंग्रता, जो विद्या की उपासना करते हैं वह तो उससे भी अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं. अविद्या रूपी कर्म और विद्या रूपी स्व ज्ञान, स्व के विषय में ज्ञान, स्व से अभिप्राय, स्व के प्रति जो हमारा ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान नहीं, जो ज्ञान अभी हमको है. अभी हमारा ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं अमुक हूं, तमुक हूं, जो कुछ भी इस समय हमें अपने विषय में ज्ञान है, यह ज्ञान जिस ज्ञान को लेकर हम संसार में अभी चल रहे हैं, यह ज्ञान जो ज्ञान इंद्रिय विषयक ज्ञान है, जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिलता है, आंख से मिलता है, कान से मिलता है और नाक से मिलता है, इन इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान जानकारी हमें मालूम पड़ती है और जो हम अपने को जानते हैं, इस ज्ञान से क्या होगा? बोले इस ज्ञान से ये होगा कि हम और भी गहरे अंधकार में गिरेंगे. ये ज्ञान से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, इससे हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं. तब उपनिषद हमें ये कहती हैं, समझाती हैं कि यह जो विद्या है ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है. दसवें मंत्र में स्पष्ट करते का अन्य देवाहुर विद्याया नान्या दाहुर विद्याया इति सुश्रम धीराणाम ये नद द्विचक्षसे. यह बात जो कही गई है, विद्या का ज्ञान जिसका फल बताया गया और अविद्या रूपी कर्म का फल बताया गया, अविद्या रूपी माने अविद्या माने कर्म, कर्म का फल जड़ता, शून्यता, नष्ट होने वाला, और विद्या जो इंद्रिय द्वारा ज्ञान अर्थात जो भोग है, जीवन में भोगता और कर्म, इन दोनों का साथ साथ समन्वय समुच्चय, दोनों साथ चलते हैं, कर्म भी और भोग भी. कर्म और भोग दोनों मनुष्य जीवन के साथ चलते हैं. अच्छा, मनुष्य जीवन के साथ ही नहीं, कर्म का भोग भोगते हुए कर्म और भोग भोगने के लिए प्राणी मात्र है। यहां तक कि देव शरीर भी भोग और कर्म भोगने के लिए, उनको भी कर्म का भोग भोगने को प्राप्त होता है। केवल भोग की जीवन में प्रधानता हो और केवल कर्म की प्रधानता हो, ये भी बात अच्छी नहीं। और कर्म के साथ भोग और भोग और कर्म की ही लिप्तता हो, बोले ये भी बात सही नहीं। क्योंकि जो धीरवान बुद्धिमान पुरुष हैं, उनसे जो सदैव हम सुनते चले आ रहे हैं, बुद्धिमानों ने जो हमारे प्रति कहा, जो उनकी व्यवस्था है, उसके अनुसार विद्या और अविद्या जानकर के, कर्म और भोग जानकर, इन दोनों को हम छोड़ दें। कर्म को भी करने की क्या आवश्यकता है, उसे भी छोड़ दें, और भोग को भी हम छोड़ दें, बोले ये भी बात अच्छी नहीं। इन इंद्रियों से हमें जो जानकारी भोग प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें भी हम छोड़ दें, बोले एक दूसरे को अंग अंगी समझ करके, उसका फल समझ करके, तब भी बात नहीं बनेगी। तब श्रुति हमें इस बात से स्पष्ट करती है कि इन दोनों में विद्याच अविद्याच यदस दोयम भयम सह अविद्या मृत्युत्रवा विद्या अमृतम मुनपश्यति। अर्थात जो विद्या और अविद्या, इन दोनों का अंतर समझते हैं, जानते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं और विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। 11वें मंत्र में एक पद समझाया गया। तो 11वें मंत्र, इन तीन मंत्रों में पहली बात कल मैंने चर्चा की थी कि जीवन में कर्म नहीं करना ऐसा नहीं है। कर्म करते हुए कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म कर्मेंद्रियां कर रही है, स्वाभाविक गति से कर्म हो, और भोग की जीवन में प्रधानता न हो, आसक्ति न हो, स्वर्गादि लोगों की किसी प्रकार की भी मुझे सुख मिलेगा, अमुक कर्म करने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मान की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, इस प्रकार किसी प्रकार के फल की चाह रख के बिना, इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ये एक दूसरे के समुचे एक के बाद एक साथ साथ कर्म भी हो, भोग भी हो, और उसको भोगने वाली इंद्रियां हैं, परंतु इन सब से, इस कर्म से, भोग से अलग जो अध्यात्म है, माने जो महावाक अहम वृत्ति है, वो इससे अलग है। इस स्वरूप भूत ज्ञान को प्राप्त करते हुए जो व्यक्ति अध्यात्म को पहचानते हैं, माने अपने भीतर, इस शरीर के भीतर, शरीर से अलग, इंद्रियों से अलग, उस ब्रह्मवित भाव में जो स्थिर होकर, ज्ञान से तत्वनिष्ठ होकर जो व्यक्ति कर्म करते हैं, न तो वो कर्म में लिप्त में, न में कर्म लिपिनते न रहा, वो कर्म में भी लिप्त नहीं होते, और तत्ते न भुंजिता, वो भोग में भी लिप्त नहीं होते, न वो भोग में लिप्त होते हैं, न वो कर्म में लिप्त होते हैं। इसलिए कर्म करते हुए, माने अविद्या से उन्हें अविद्या से मृत्युर तरवा, वो अविद्या से मृत्यु को प्राप्त पार कर जाते हैं, माने कर्म का बंधन, कर्म की जड़ता उन्हें बांध नहीं सकती है। और विद्याया अमृतम अनुपश्यते, अर्थात विद्या से वो जीवन का भोग भोगते हुए अमृतत्व की, अर्थात अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं, न तो उनकी कहीं भोगासक्ति होती है। भोग में आसक्ति न हो, कर्म में आसक्ति न हो, दोनों का, कर्म और भोग दोनों को अपने से अलग करते हुए, विलग करते हुए, ये जो कार्य हो रहे हैं, बोले कौन कर रहा है, कर्मेंद्रिय कर रही है और ज्ञानेंद्रिय करा रही है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों से हमारी भूल ये हो जाती है कि हम अपने आप को कर्मेंद्रियों से करता और ज्ञानेंद्रियों से भोगता, और ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को मैं अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं देखने वाला हूँ, मैं सुन, इंद्रियां जो दिखाती हैं, इंद्रियां जितना बताती हैं, इंद्रियां जितना समझ, बुद्धि से जितनी समझ में आ गई, आंख ने जितना देख लिया, नासिका ने जितनी गंध ग्रहण कर ली, बस इंद्रिय के द्वारा जितना हमें ज्ञान इकट्ठा हो गया उसी को हमने स्व समझ लिया, मैं समझ लिया, और उसी को मान करके उन इंद्रियों से परोसे गए भोगों को भोगने में ही हमारी निरंतर आसक्ति बनी रहती है, और उस आसक्ति को कुछ छोड़ नहीं पाते हैं, कहते जरूर हैं, परंतु आसक्ति छूटती नहीं है ना, निरंतर उनकी आसक्ति बनी रहती। इसलिए ईशावास्य अपने श्रुति माता भगवती ये कहती हैं कि जिस जो धीरवान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो अपनी बुद्धि के द्वारा केवल केवल इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान तो वो है, धीवान तो धी कहते हैं बुद्धि को, और जो बुद्धि युक्त हैं उनको कहते हैं धीमान, धैर्यवान व्यक्ति वह है जिसने अपनी बुद्धि का विनियोग किया है स्व को समझने में, अपने को पहचानने में, अपने स्वरूप में, मैं का जो मैं क्या हूं। न रूप मत्स्य न तो उपलब्ध, आप कहते हैं जिसका कोई रूप नहीं, अर्थात रूप नहीं तो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, जो आंखों का विषय नहीं, कानों का विषय नहीं, केवल केवल हम सुन करके प्राप्त कर लेंगे, बोले वो भी बात नहीं, और वो बात भी नहीं हो सकती, सुन के भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, और कोई ऐसा भी नहीं कि जिसे जीव के द्वारा चख करके बताया जा सके, उसका स्वाद बताया जा सके, बोले वो भी नहीं, और केवल केवल शब्द प्रमाण वाक के द्वारा जिसे समझा जा सकता है, उसके लिए कहा कि पहले हमें क्या करना होगा। इसलिए भगवती कहती हैं कि हमें विद्याया अविद्या च, इस स्थिति में भोग भी नहीं हो, कर्म में भी लिप्त आसक्ति नहीं हो, भोग में भी आसक्ति नहीं हो, कर्म का त्याग भी नहीं हो और भोग का त्याग भी नहीं, कर्म में कर्म से कर्म योगी बनकर और भोग में लिप्तता न हो करके भक्ति योगी बन करके, और स्वस्वरूप को जानते हुए ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए कहा गया कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। कठोपनिषद की वो बात याद करो, ना विरेत्यो दुश्चरिता ना, ना शांतो ना समाहिता, जिस व्यक्ति का ना विरितो दुश्चरित्राणाम, उसके लिए हमें क्या करना है। ये मंत्र ये कहता है कि जब तक हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा, माने चरित्र से अभिप्राय आचरण, हमारी इंद्रियों का आचरण, जब तक इंद्रियों द्वारा जो आचरण किया जा रहा है, जो किया जा रहा है, ये शुद्ध नहीं होगा। ना विरितो दुश्चरित्राणाम, इंद्रियों से आचरण अच्छा नहीं होगा तो मन कभी शांत नहीं हो सकता, और मन में शांति नहीं होगी तो बुद्धि में समाधान भी नहीं होगा। इसलिए ना शांतो ना समय का, ऐसा जब तक नहीं होगा, इसलिए सबसे पहली बात हमारी इंद्रियों का जो आचरण है वो कैसा है। इंद्रिय आचरण देखना होगा, इंद्रियों का आचरण, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आंख देखती क्या है। मैं हमेशा कहती हूं कि आंख क्या देखती है, क्या उसी को देखती है जिसे आंख देखना चाहती है। आप कथा तो बहुत सुनते हैं, परीक्षित जी की कथा में आता है कि परीक्षित जब पैदा हुए तो उन्होंने पैदा होने से पहले मां के गर्भ में भगवान को देख लिया, और जब वो जगत में आए तो उनकी आंख क्या ढकोसती थी, जो भी उनके सामने आए उनके नेत्र उसी को खोजते थे, क्या ये वही है जिसे मैंने मां के गर्भ में देखा था। वो सब उनके अंदर, वो उसी को खोज रहे, उसी को देख रहे, ये वही है, ये वही है जिसे मैंने मां के गर्भ में देखा था। और जगत जब महाराज परीक्षित को देखता है तो परीक्षित को देखने के साथ ही संसार ये कहता है, ये वही परीक्षित है जिसकी रक्षा भगवान ने इनके मां के गर्भ में की थी। संसार जब परीक्षित को देखता है तो भगवान को याद करता है, और परीक्षित जब भगवान को देखते हैं, जब संसार को देखते हैं, तो वो भगवान को जगत में, संसार में भगवान को देखते हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं, बोले भगवान को देख रहे हैं। उसी तरह से जब तक हमारी दृष्टि कर्म करते हुए इतनी शुद्ध नहीं हो जाए, कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमारा आचरण है, व्यवहार है, वो जब तक शुद्ध नहीं होगा, ये अविद्या और विद्या का जो विषय है, जब तक चरित्र हमारा अच्छा नहीं होगा तो आंख क्या वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं, कान वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, क्या हमारे कानों पर हमारा इतना नियंत्रण है, इतनी पकड़ है कि कान बिल्कुल ठीक वही सुनती हैं जो हम सुनना चाहते हैं, आंख वही देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं, पांव वही जाते हैं जहां हम ले जाना चाहते हैं, ये पांव ये हाथ वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान के आगे यूं करते हैं, तो आपने कभी सोचा ये क्या है? हाथ जोड़ करके हम भगवान से ये कहते हैं कि भगवान मैं सब करूंगा, पर करूंगा क्या जो आप कराओगे, मेरी बुद्धि चलेगी पर जैसी आप चलाओगे। इसका समर्पण किसके लिए है? भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, अर्थात असंग होकर, बिना किसी आसक्ति के असंग भाव से, इंद्रियां तो असंग हैं ही हैं, इंद्रियां असंग हैं, जिह्वा कितनी चिकनाई खाती है पर चिकनाई जीभ में चिपकती नहीं है, आंख कितने दृश्यों को देखती है पर आंख किसी दृश्य के साथ बंधती नहीं है। इन इन आंखों से हम कितना जगत देखते हैं, कितनी सारी चीजें देखते हैं, परंतु आंख कभी किसी के साथ जाकर चिपकती नहीं है। पांव से हम चलते हैं, पांव पृथ्वी के साथ लगते नहीं है, चिपकते नहीं है। इंद्रियां तो छोड़ रही हैं, कर्म इंद्रियां छोड़ रही हैं, और इन इंद्रियों के सब इन पर कौन चल रहा है? बोले ज्ञान इंद्रियां, ये तो छूट असंग हैं, परंतु फिर भी इन इंद्रियों के साथ आंख हमारी कहीं अटक गई है, हमारी आसक्ति हो गई है। अर्थात उस आसक्ति को जो हम अपने भीतर ले आए हैं, कर्म कर्म को देखकर, कर्म के फल के साथ आसक्त होकर, देव वासना के साथ भोगों से आसक्त होकर, भोगाशक्ति को लेकर, कर्माशक्ति को लेकर, जो कर्म में आसक्ति है, भोग में आसक्ति है, ये आसक्ति जब तक हमारे अंदर है तभी तक हमारा चरित्र, हमारा आचरण सही नहीं है ना। इसलिए केवल प्रज्ञा के बल पर, बुद्धि के बल पर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं। उपनिषद कहती ना विरतो दुश्चरिता नाम ना शांतो ना समाहितो, प्रज्ञान है न प्राप्त। केवल बुद्धि के बल पर हम उस तत्व को, कौन आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहे, स्व के विषय में जानना चाहे, संभव नहीं। इसीलिए पहले हमें इन दोनों चीजों, विद्या और अविद्या को समझना होगा, कर्म और कर्म का जो फल है, भोग है, देव उपासना है, कर्म क्या है और उपासना क्या है, कर्म उपासना का जो सूक्ष्म अंतर है, ज्ञानेन्द्रियों से उपासना होती है और कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, और ये एक दूसरे के समुचे, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और इन दोनों का अंतर फर्क जान करके जब तक इनके प्रति हमारी आसक्ति नहीं जाएगी, अब आसक्ति अपने आप को इनसे अलग नहीं कर पाएंगे, तब तक स्व के विषय में आत्मज्ञान, मैं जो हमारी वृत्ति है, मैं अखंड वृत्ति है, पर मैं इस मैं वृत्ति में जो जीव भाव है, जिससे अपने आप को कर्ता और भोक्ता हम मान रहे हैं,